दिन भर 24 मई शुक्रवार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। सूरत की एक कमर्शियल इमारत में लगी भयंकर आग, अब तक 15 की मौत।
ये भी देखा गया, आई विटनेसेस ने हमको ये बताया कि बहुत सारी लड़कियां थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर कूदने लगी जहां पर कुछ शेड बने हुए थे।
ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने की इस्तीफे की घोषणा, 7 जून को छोड़ेंगी पद।
आई फील एज सर्टेन टुडे एज आई डिड 3 इयर्स अगो दैट इन अ डेमोक्रेसी इफ यू गिव पीपल अ चॉइस।
राहुल गांधी की हार के बाद क्या बोले अमेठी के लोग?
उन्होंने अमेठी के आदमियों को आदिवासी के रूप में समझा और इनको हम आएंगे, भावनात्मक बात करेंगे, पिताजी के नाम से हम हर बार नैया अपनी पार लगा लेंगे।
लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। गुजरात के सूरत शहर में एक कमर्शियल इमारत में भीषण आग लगने की खबर है, जिसमें अभी तक 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि भी हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। वो 7 जून को कंजर्वेटिव पार्टी की नेता के पद से इस्तीफा दे देंगी। हालांकि वो अपना उत्तराधिकारी चुने जाने तक प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। डाउनिंग स्ट्रीट में अपने संबोधन में टेरेसा मे ने कहा कि ब्रेग्जिट में कामयाब न हो पाने का उन्हें गहरा दुख रहेगा। मे ने कहा कि उन्होंने अपने ब्रेग्जिट सौदे के लिए समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश की है, मगर ये देश के हित में होगा कि अब नया प्रधानमंत्री प्रयासों को जारी रखे। भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर जाकिर मूसा के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि त्राल में सेना के साथ हुई मुठभेड़ में जाकिर मूसा की मौत हो गई है। पूरी जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
वर्ष 2013 में चरमपंथी सफों में शामिल होने वाले चरमपंथी कमांडर बुरहानवादी के साथ ही रह चुके जाकिर रशीद भट्ट आका जाकिर मूसा को गुरुवार की शाम को दक्षिणी कश्मीर के त्राल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक एनकाउंटर में मारने का दावा करते हुए बताया है कि मूसा को मारने से दक्षिणी कश्मीर में चरमपंथ के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन से अलग होने के बाद मूसा ने अंसार गजबतुल हिंद नामी संगठन की बुनियाद रखी थी। मूसा को झड़प में मारने की खबर फैलने के बाद कश्मीर के कई इलाकों में झड़पों की भी खबरें सामने आई है। प्रशासन ने कल शाम से ही कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया है और कश्मीर के कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी तादाद में तैनात कर दिया गया है और कई इलाकों में लोगों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
जानकारी दे रहे थे माजिद जहांगीर। थाईलैंड में चुने गए सांसदों ने पहली बार अपना अपना पदभार संभाला है। सैन्य शासन समाप्त होने के बाद इस साल मार्च में थाईलैंड में चुनाव कराए गए थे। हालांकि देश के चुनाव आयोग पर आरोप लगे थे कि उन्होंने सेना के समर्थन वाले दलों को जीत में अधिक सीटें दी हैं। थाईलैंड के राजा ने सांसदों से कहा है कि वे देश हित में काम करें। थाईलैंड के राजा ने कहा, मैं सभी सांसदों से अपील करता हूं कि वो अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, क्योंकि हर एक सदस्य का काम सीधे सीधे देश की सुरक्षा और लोगों की बेहतरी से जुड़ा होता है। ये थे थाईलैंड के राजा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अल्जीरिया में पुलिस ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। ये प्रदर्शनकारी आज राजधानी अल्जीयर्स में सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सैकड़ों प्रदर्शनकारी ग्रैंड पोस्ट ऑफिस के सामने जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। ये लगातार 14वां शुक्रवार है जब अल्जीरिया वासियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार विरोधी प्रदर्शन किया है। रूस में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक पूर्व अमरीकी नौसैनिक ने आरोप लगाया है कि खुफिया विभाग की जांचकर्ता ने उनका अपमान किया और उन्हें जान से मारने का डर दिखाया है। 5 महीने से जेल में बंद पॉल विलन ने मॉस्को की एक अदालत में बताया कि कैप्टन का रवैया बहुत ही खराब रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पॉल पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने रूस से जुड़े कुछ खुफिया दस्तावेज अपने पास रखे थे। हालांकि पॉल इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। नेपाल में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई का इंतजाम करने वाले आयोजनकर्ताओं ने बताया है कि एक हफ्ते के भीतर इस चोटी पर चढ़ाई करने वाले 7वें पर्वतारोही की मौत हो गई है। मारे गए तीन लोगों में से 2 भारतीय हैं, जबकि 1 ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। बताया जाता है कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में एक पर्वतारोही की इसलिए मौत हो गई क्योंकि उन्हें अपनी अंतिम चढ़ाई के लिए 12 घंटे से अधिक इंतजार करना पड़ा।
नमस्कार, स्वीकार कर रहे हैं मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले गुजरात के सूरत से एक बड़ी दुखदायी खबर आई है कि वहां एक 4 मंजिला इमारत में भयंकर आग लगने से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के इमारत में फंसे होने की आशंका है। मृतकों में सबसे अधिक छात्र और छात्राएं बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हताहतों के प्रति दुख जताया है। साथ ही दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 4 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। इस घटना की पूरी जानकारी के लिए मैंने अहमदाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागडेकर छारा से बात की।
4:30 बजे सूरत में जो तरथाना एक एरिया है वहां पर तक्षशिला कॉम्प्लेक्स है, वहां पर ये आग लगी थी। पहले ये जो आग थी वो बहुत छोटा धुआं था। हमारी कुछ आई विटनेसेस से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि धुआं बहुत कम दिख रहा था पहले, लेकिन बिल्कुल क्योंकि वहां पर जो टॉप फ्लोर है वहां पर टेरेस है और टेरेस के ऊपर एक शेड बनाया हुआ है टेम्पररी, और वो शेड जो है उसमें आग लगी थी जो थर्मोकोल का था, तो वो आग बहुत बहुत जल्दी फैलने लगी जिसकी वजह से ये आग ने बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया।
ये इसमें कहा जा रहा है कि कुछ छात्रों की मौत हुई है, तो इस इमारत में किस तरीके की क्लासेस चल रही थी और कितने लोगों के मारे जाने की आशंका है?
जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है अलग अलग जो न्यूज एजेंसी हैं उसमें टोटल जो डेथ है वो करीब 15 लोगों की मानी जा रही है कि, लेकिन ये जो रिपोर्ट हुआ है उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कुछ 15 लोगों के मरने की आशंका है। और ये ट्यूशन क्लासेस चल रहे थे और खास करके लड़कियां बड़ी मात्रा में वहां पर थी। ये भी देखा गया, आई विटनेसेस ने हमको ये बताया कि बहुत सारी लड़कियां थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर कूदने लगी, जहां पर कुछ शेड बने हुए थे, शेड के ऊपर वहां से कूदी और वहां से नीचे वो आई फर्स्ट फ्लोर तक कूदी, जिसकी वजह से उनको वहां कूदने की वजह से भी उनको इंजरी हुई है।
तो क्या जिस तरीके के कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं जिसमें आपने बताया कि छात्र कूद रहे हैं इमारत से, तो क्या ऐसी कुछ खबरें हैं कि कुछ बच्चे क्या अभी भी फंसे हुए हैं वहां पर?
जी, इसकी अभी तक पूरी तरह से जानकारी हमको मिल नहीं पाई, हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है फिलहाल कि फायर ब्रिगेड की करीब 24 गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई है और ये जो पूरा आग है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है वहां पर।
सूरत की कमर्शियल इमारत में भयंकर आग, 15 की मौत। अब बात एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वो 7 जून को अपने पद से इस्तीफा देंगी। ब्रेक्जिट के मुद्दे पर कंजर्वेटिव पार्टी की आंतरिक लड़ाई के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए हमारी सहयोगी कमलेश मठेनी से।
एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा की है। मैंने कहा कि नया नेता चुने जाने तक वो प्रधानमंत्री की भूमिका निभाती रहेंगी। अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए मैंने कहा कि उनके लिए ये घोर व्यक्तिगत निराशा की बात है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने का रास्ता साफ नहीं कर सकी।
I feel as certain today as I did 3 years ago that in a democracy, if you give people a choice, you have a duty.
मैं इस बात को लेकर आज भी उतनी ही निश्चिंत हूँ जितनी कि 3 साल पहले थी कि लोकतंत्र में अगर आप लोगों को चुनाव का हक देते हैं तो उनके फैसले को लागू करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। मैंने ये करने की हर संभव कोशिश की। मैंने यूरोपीय संघ से अलग होने की शर्तों पर समझौते किए। मैंने नई पड़ोसियों के साथ रिश्ते बनाए जो नौकरियां बचाएं, हमारी सुरक्षा और हमारे संघ की रक्षा करें। सांसदों को समझौते पर सहमत करने के लिए मैं जो भी कर सकती थी मैंने किया। ये निराशाजनक है कि मैं ऐसा करने में नाकामयाब रही। ये थे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे के शब्द। अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए टेरेसा मे भावुक भी हो गईं। टेरेसा मे के इस्तीफे पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए यूरोपीय आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो भी नया प्रधानमंत्री होगा उसके साथ सहयोग किया जाएगा। हालांकि आयोग ने यह भी कहा है कि अलग होने के समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा। आयोग की प्रवक्ता मीना एड्रीवा ने कहा,
President Juncker followed Prime Minister May's announcements this morning without personal joy.
अध्यक्ष यूंकर ने आज सुबह प्रधानमंत्री मे के इस्तीफे की घोषणा को सुना। अध्यक्ष को प्रधानमंत्री के साथ काम करना अच्छा लगा और जैसा कि वो पहले कह चुके हैं, टेरेसा मे एक हिम्मती महिला हैं, जिनके प्रति उनके मन में गहरा सम्मान है। वो नए प्रधानमंत्री के साथ भी उसी सम्मान के साथ काम करेंगे और प्रधानमंत्री टेरेसा मे से भी बातचीत करते रहेंगे। अलग होने के समझौते को लेकर हम स्पष्ट हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये थे यूरोपीय आयोग की प्रवक्ता मीना एडिरीवा के शब्द। एक जनमत संग्रह में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला लिया था। प्रधानमंत्री टेरेसा मे पर इस फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो ऐसा करने में नाकाम रही। उन्होंने यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए समझौता किया, जिसे ब्रितानी सांसदों ने नकार दिया। केन क्लार्क कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व चांसलर हैं। वो ब्रेक्जिट को लेकर टेरेसा मे के सभी फैसलों से सहमत नहीं है, लेकिन उन्हें भी लगता है कि टेरेसा के साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं किया गया। केन क्लार्क कहते
हैं,
ये पहली बार है जब भले ही कुछ पलों के लिए ही सही, टेरेसा मे ने अपनी भावनाओं को व्यक्त होने दिया है। मुझे लगता है कि आम जनता में उनके प्रति गहरी सहानुभूति पैदा होगी। उनके साथ क्रूर व्यवहार हुआ है। 3 महीनों से उनकी राजनीतिक हत्या के प्रयास हो रहे थे, जो अब कामयाब हो गए हैं। टेरेसा मे के बिना वो क्या करेंगे, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। मुझे लगता है कि वो ईमानदार थीं और जागृत थीं। उन्होंने कई गलतियां भी की, उनके हर काम से मैं सहमत नहीं हूँ। ये एक दुखद अंत है और अब ईश्वर ही जानता है कि वो यहाँ से आगे कहाँ जाएंगी। ये थे कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व चांसलर केन क्लार्क के शब्द। टेरेसा मे जब 10 डाउनिंग स्ट्रीट की सीढ़ियों पर खड़ी होकर अपने इस्तीफे की घोषणा कर रही थी, तब वो काफी भावुक थी। ब्रेक्जिट के मुद्दे पर ब्रितानी लोगों को एक साथ लाने में उनका नेतृत्व बिखर गया। ब्रितानी राजनीति के हर छोर से उनके लिए सहानुभूति प्रकट की जा रही है। टेरेसा मे ब्रेक्जिट की प्रक्रिया को बीच में छोड़कर जा रही हैं। अब सवाल यही है कि कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता क्या वहां कामयाब हो सकेगा जहां वो नाकाम रही। क्या यूरोपीय संघ से समझौता होगा, या नया जनमत संग्रह होगा, या फिर नए चुनाव होंगे।
ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने की इस्तीफे की घोषणा। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुना रही थी कमलेश मठेनी।
बीबीसी इंडिया बोल।
आइए बहनों, नरेंद्र मोदी की लगातार दूसरी बार चुनावों में प्रचंड जीत। क्या मोदी अब बीजेपी से बड़े हो गए हैं? क्या है मोदी के जीत के मायने? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। 25 मई शनिवार को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001।
श्रोताओं, आज चुनावी खबरों के मद्देनजर साप्ताहिक कार्यक्रम विवेचना नहीं होगी, लेकिन अगले सप्ताह से इसे आप उसी तय समय पर सुन सकेंगे। बढ़ते हैं आगे। 17वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी ने जहां 303 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर सिमट कर रह गई है। आज जहां बीजेपी मुख्यालय में लोगों का काफी आना जाना लगा रहा, वहीं शाम 5 बजे के करीब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। रुख करते हैं बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव का, जो आज पूरे दिन बीजेपी मुख्यालय में रहे और हमसे अब टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नितिन, बताएं कि आज क्या माहौल रहा भाजपा कार्यालय में? आप वहां पूरे दिन भर रहे हैं।
जी शाहिद, भाजपा कार्यालय के साथ साथ माहौल बाद में शिफ्ट हुआ पार्लियामेंट पर और पार्लियामेंट में और अभी राष्ट्रपति भवन में, जहां जिसके पास अभी हम मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इस्तीफा एक तरह से उनको सौंपा है और राष्ट्रपति ने उनसे कहा है कि आप अगली सरकार बनने तक इसको, इस गवर्नमेंट को चलाएं। इसके पहले का जो 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 दिन भर का हाल रहा, वो ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में काफी हलचल रही, क्योंकि पार्टी ने अपने सभी सांसदों से कहा है कि वो दिल्ली आए और कल यानी 25 तारीख को पार्लियामेंट के ही सेंट्रल हॉल में मोदी को, नरेंद्र मोदी को फॉर्मल तौर पर फिर से नेता चुना जाएगा, ताकि फिर से सरकार की दावेदारी पेश की जाएगी। उसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसके अलावा ये इस बात पर चर्चा हो रही है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कब हो और कैसे हो। कुछ लोगों का पार्टी के भीतर कहना है कि शायद 30 की तारीख के आसपास शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है।
नितिन, इस दौरान ये खबर भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस भी जा सकते हैं।
जी बिल्कुल, क्योंकि ये खबर इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार उन्होंने कुछ ऐसे ही किया था। पहले वो बनारस गए थे चुनाव जीतने के बाद, फिर वहां से वो अहमदाबाद गए थे और उसके बाद फिर आकर उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। तो लेकिन पार्टी के लोगों का ये कहना है कि शायद 28 तारीख वो डेट होगी जिसमें नरेंद्र मोदी वाराणसी जा सकते हैं, जहां से वो दूसरी बार पिछली बार से ज्यादा मतों से चुनाव जीते हैं। लेकिन अभी कोई आधिकारिक, कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन इस पर नहीं आया है। जो पार्टी के अंदर के लोग हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब अगला लेवल जो है डिस्कशन का, डिबेट का, वो ये होगा, जाहिर है उससे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और नरेंद्र मोदी सबसे बड़े फैसला लेने वाले लोग होंगे, वो ये होगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा और किसके पास क्या क्या पद होगा।
जी नितिन, कहाँ शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है? 30 तारीख की बात की जा रही है, इस पर कोई खबर है आपको?
शायद शपथ ग्रहण समारोह पे इस बार बड़ी दिलचस्प बातें निकल कर आ रही हैं। कुछ नेता हैं जो जाहिर है अपने को कोट नहीं करना चाहते,
बिल्कुल
वो लोग कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली के बाहर हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे पिछली बार सार्क के नेताओं को बुलाया गया था शपथ ग्रहण समारोह में, तो शायद इसीलिए इस बार भी 5-6-7 दिन टाला जा सकता है ताकि उनको इन्विटेशन जाए, निमंत्रण जाए और वो लोग आए अपने सुविधा अनुसार उस तारीख को। और दूसरी तीसरी बात ये भी कही जा रही है कि वो किसी ऐसी जगह होगा, जाहिर है, जहां पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम भी हो।
यानी कि बहुत कयास लगाए जा रहे हैं अभी, सिर्फ कयास। जी बहुत बहुत खबरें, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव इतनी सारी जानकारियों के लिए। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी के वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक मंडल के सदस्य लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचे। आशीर्वाद दिए जाने के बाद मुरली मनोहर जोशी ने पत्रकारों से क्या कहा, जरा सुनिए।
अपने वयोवृद्ध लोगों के साथ, चाहे वो पार्टी में हो या व्यापक परिवार हो जो अपना उसमें, सबसे जाकर उनकी शुभकामनाएं लेते हैं और जो कुछ किया गया है उसके लिए भविष्य में और अधिक तेजी के साथ, शक्ति के साथ काम कर सकें, इसके लिए उनकी शुभकामनाएं लेते हैं। तो उसी दृष्टि से प्रधानमंत्री जी और अध्यक्ष जी आए थे, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और एक करिश्माती जीत हासिल की है। हम लोगों ने पार्टी बनाई थी, बीज लगाया था, उसमें एक अच्छा पेड़ भी पैदा किया था। अब ये फलदायी पेड़ इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है जो लोगों को फल देगा, और हमने यही कहा कि अब इसके फल सारे देश को अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट दिलवाना, ये भी जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट थी कि देश के सामने एक मजबूत सरकार बनाने का, दृढ़ सरकार बनाने का की आवश्यकता सारा देश महसूस करता है। तो उसके लिए सिवाय भारतीय जनता पार्टी पार्टी के नाते और नरेंद्र भाई एक नेता के नाते कोई दूसरा विकल्प नहीं था, और विपक्ष कोई अपनी कहानी, मनभावनी कहानी सुना नहीं पाया। देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं तो जो करता रहा हूं आज तक वही करता रहूंगा, बाकी पार्टी क्या करना चाहती है वो तो पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का। आई हैव माई ओनली वन एक्सपेक्टेशन दैट द पार्टी शुड डिलीवर एज बेस्ट एज पॉसिबल एंड वट एवर contribution any party worker can make to make the delivery effective and long lasting, that should be made.
लोकसभा, ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 52 सीटें मिली हैं। 2014 में उसे 44 सीटें मिली थी, तो इसे पिछले से बेहतर प्रदर्शन कहा जा सकता है। लेकिन इस दौरान गांधी परिवार के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को हार झेलनी पड़ी है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया है। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली अभी अमेठी में हैं, उन्होंने वहां के कुछ लोगों से राहुल गांधी की हार पर बात की।
काहे हार गए राहुल का?
कुछ विकास ही नहीं किए तो हार गए। वो आते थे अमेठी में, रुकते ही नहीं थे, मुंशीगंज चले जाते, मुंशीगंज की बात करके चले जाते, यहाँ रुकते ही नहीं थे।
इनको अब की हारना था, एकदम फिक्स था, एकदम क्लियर था।
अमेठी की जनता क्या है, भावनाओं पे चल रही थी। ये जो आप काम देख रहे हैं, जितने भी HL है, BHL है, हमारी संजय गांधी ट्रस्ट जो चल रहा है, ये सब माननीय राजीव गांधी जो इनके पिताजी थे और संजय गांधी की देन थी जो है, वो सब उनका विकास है। यहाँ पर जब से पिछले 15 वर्ष से जो है राहुल गांधी यहाँ से विजयी होकर जनता भेज रही है, तो उसके बाद कोई कार्य देखो, यहाँ अमेठी क्षेत्र में ही देख लो आप, एक बाईपास जन नहीं बन पा रहा
है। बाईपास पे चले जाइए, पूरा पता है, गाड़ी लेके जाओगे तो वो चक्का निकल के निकल भाग जाएगा आगे।
काम तो उन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं, बहुत काम किया है। जैसे ये होता है कि अब जो पब्लिक के बीच में रुकना या उनको जो है कुछ बातें बोलना, इससे लोग जाने कि हाँ हमसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमियाँ आई हैं।
जो कुछ फ़ायदा मिला है चंद लोगों को मिला, जिनको पेट्रोल पंप मिला, गैस एजेंसी मिली, और आम आदमी को जो है उन्होंने मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा।
बार उनको हारना था ना, एकदम पूरा क्लियर हो गया था, जनता पूरी जाग चुकी थी, हर टाइम हर वक्त नहीं जाग पाई, अब पूरी आपकी जाग गई थी कि आपकी हराना है, पूरा एकदम फिक्स कर ली थी।
पूरी तरह से जो है उम्मीद थी जो है इस बार जो है स्मृति ईरानी जो है निकाल लेंगे सीट, क्योंकि पिछले 3 महीना से, 3 महीना क्या, जब से चुनाव हारी है स्मृति ईरानी, जब से लगातार अपने जो अमेठी संसदीय क्षेत्र है आती रही हैं।
राहुल वही गेस्ट हाउस से वापस चले जाते थे, अगर आते तो आज वो हारते नहीं, अमेठी उनका था, गढ़ था, लेकिन वो बचे, जितना दिन चले वो राजू के नाम पे चले, इसके बाद ख़त्म।
यहाँ कोई विकास है ही नहीं तो लगेगा क्या, कुछ मिला के विकास होना चाहिए, कुछ भी हो, कोई भी सरकार बने, विकास लाए हमारे यहाँ, वो सरकार हमारी है।
राहुल जी से लोगों को उम्मीद थी कि वो कुछ करेंगे, 10 साल क्यों UPA सरकार 1 और 2 दोनों थी, प्रधानमंत्री उनका था और चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अमेठी के आदमियों को आदिवासी के रूप में समझा कि ये सब आदिवासी हैं और इनको हम आएंगे, भावनात्मक बात करेंगे और पिताजी के नाम से हम हर बार नैया अपनी पार लगा लेंगे।
अमेठी के लोगों से बात कर रहे थे BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। यूपी के बाद अब रुख करते हैं बिहार का, जहां पर BJP JDU गठबंधन के आगे RJD गठबंधन को करारी हार देखने को मिली है। BJP ने 17, JDU ने 16 और LJP ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं महागठबंधन में RJD को एक भी सीट नहीं मिली है और कांग्रेस ने किशनगंज की एक सीट से जीत दर्ज की है। RJD, कांग्रेस, RLSP, हम के इस महागठबंधन को सिर्फ एक ही सीट क्यों मिली और आगे नीतीश कुमार का क्या भविष्य रहने वाला है, यही जानने के लिए मैंने संपर्क किया बिहार के वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर से।
देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की पार्टी को एक भी सीट चुनाव में नहीं मिली। ये चौंकाने वाली बात भी है और गठबंधन का ये हाल हो जाएगा शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की। जितने लोग जमीनी सच्चाई को जानते हैं बिहार में, जो जातीय गठबंधन होता रहा है अब तक, उसमें जो समीकरण जैसे यादव मुस्लिम समीकरण जिस रूप में फायदा पहुंचाता रहा है लालू प्रसाद यादव की पार्टी को, इस बार वो समीकरण भी काम नहीं आएगा और वो इस तरह से बिखर जाएगा कि उसके बूते एक भी सीट इस दल को नहीं मिली। दूसरी बात की ये जो गठबंधन किया गया था 3-4 दलों को साथ लेके, उन दलों की भी स्थिति ऐसी नहीं बन पाई कि वो एक दूसरे की मदद कर सके, वोट का ट्रांसफर भी वो अपने घटक दलों के बीच नहीं करा सके। तीसरी बात यह हुई कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों ने मिलजुल के ऐसा माहौल बनाया, इन्हें डर था कि हो सकता है कि MY समीकरण के बूते यहाँ जो गठबंधन है उसको कुछ ज्यादा सीटें मिल जाएं, तो इन लोगों ने ऐसा किया कि यादव मुस्लिम को छोड़ के, मतलब गैर यादव हिंदू मतों को का ध्रुवीकरण करने की कोशिश हुई और उसके लिए आधार बनाया गया राष्ट्रवाद को।
नीतीश कुमार जो हैं, उनका दल JDU को 16 सीटें मिली हैं, अब उनके स्टेटस को क्या देखते हैं, क्योंकि अभी देखा गया कि चुनाव के दौरान वो एकदम ही गायब रहे, उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, उनके दल ने कोई घोषणा पत्र तक जारी नहीं किया, अब उनकी स्थिति क्या नजर आती है आपको?
जनता दल यूनाइटेड को तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत फायदा हुआ इस चुनाव में खास तौर पे, और ये भी कह सकते हैं कि BJP को भी JDU को साथ लेने से एक फायदा हुआ। वो इस तरह से कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, उन्होंने बिल्कुल एकजुट होके इस NDA को वोट किया है, ये साफ दिखने लगा था सतह पे। इसकी वजह यह बनी कि जो वहाँ अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जिन पर पकड़ मजबूत माना जाता है ये नीतीश कुमार का, तो ये नीतीश कुमार से जो जुड़े हुए अति पिछड़ी जातियों के मतदाता हैं, वो उन्होंने BJP की मदद की और नीतीश कुमार की पार्टी को BJP से जुड़े हुए जो अपर कास्ट के मतदाता हैं उन्होंने मदद की। ये दोनों मिला के एक ऐसी स्थिति बनी कि वो एक मजबूत रूप में NDA सामने आया।
नीतीश कुमार के दल JDU की मोदी कैबिनेट में क्या वो बड़ा हिस्सा बन पाएगी?
देखिए, नीतीश कुमार ने तो ये इच्छा जाहिर कर दी है, एक बातचीत में उन्होंने पहले ही कह दिया कि अगर हम गठबंधन का हिस्सा हैं तो सरकार का हिस्सा क्यों नहीं बन सकते हैं, ये संकेत तो उन्होंने दे दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा कुछ अभी तक नहीं कहा है कि वो गठबंधन में सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे।
बिहार में महागठबंधन क्यों हुआ साफ, बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर। 2014 के चुनावों में जहां मोदी लहर की बात की जा रही थी, वहीं कल के परिणामों के बाद इसे मोदी सुनामी का नाम दिया गया, लेकिन ये सुनामी उत्तर भारत तक ही अधिक चल पाई। दक्षिण भारत के क्षेत्रीय पार्टियों वाले राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में ये लहर देखने को नहीं मिली। यहां तक कि केरल में सबरीमला मंदिर मुद्दे पर बहुत सक्रिय रहने के बावजूद BJP ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। सुनिए इस इस पर पूरी विस्तार से रिपोर्ट इमरान कुरैशी की।
जैसे राजनीति में कुछ भी हो सकता है, वैसे ही चुनाव में भी कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की शक्तिशाली क्षेत्रीय पार्टियां भी मोदी की हवा में एक तरह से बह गईं, लेकिन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मोदी की हवा को रोकने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों ने एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी। आंध्र प्रदेश और तेलुगु देशम पार्टी को बहुत बुरी तरह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और वाईएसआर कांग्रेस सत्ता पक्ष बन गई है। इन दोनों पार्टियों की हार या जीत का मतलब ये है कि इन्होंने बीजेपी या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी है। इसके कारण क्या है, हमने ये सवाल वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जिंका नागराजू से पूछा। क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग रूप लेती हैं। अगर कहीं इनकी पहचान जाति के रूप में है तो वहीं आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में इनकी क्षेत्रीय पहचान है। जब ऐसी पार्टियां क्षेत्रीय पहचान लेती हैं तो वो ज्यादा मजबूत होती हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जाति की पहचान जैसी पार्टियों का समर्थन घट गया है, लेकिन तेलंगाना में जहाँ सिर्फ एक क्षेत्रीय पार्टी यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति या TRS है, वहाँ बीजेपी 4 सीटें ही जीत पाई है। मतलब ये कि तेलंगाना में एक विपक्षी पार्टी के लिए जगह है और बीजेपी उस जगह को भरने की कोशिश कर रही है। ये थे जिंका नागराजू के शब्द। तमिलनाडु में भी 52 साल से द्रविडियन पार्टियां इस तरह का काम कर रही हैं। इसी तरह राष्ट्रीय पार्टियां DMK या अन्ना DMK के आसरे के बिना चुनाव नहीं जीत सकती हैं। DMK के गठबंधन ने लोकसभा के 38 सीटों में से 37 सीटें जीत ली हैं। वो बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान भी कुछ सालों से चला रही थी, खासकर उन विषयों पर जो जनता के खिलाफ थे। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी यहाँ एक और कारण भी अपने लिए जगह नहीं बना पा रही है। वो क्या कारण है, समझाते हैं वी सुरेश, जिन्होंने अपनी PhD जाति और हिंसा पर की थी। सुरेश मानव अधिकार संस्था PUCL के महासचिव हैं।
North India, it worked in West India. It did not work in South India because South India has a 100-year tradition.
हाँ, ये सही है कि देश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में जाति को पार करके मतदान बीजेपी को किया गया है। वो दक्षिण भारत में नहीं कर पाई है क्योंकि यहाँ जाति विरोधी और सामाजिक न्याय आंदोलन चले हैं। यही वजह है कि दक्षिण भारत में विभाजनकारी जहर के खिलाफ इतना मजबूत बांध बना है। ये थे बी सुरेश के शब्द। सुरेश का मानना है कि दक्षिण भारत राज्यों में जाति विरोधी राजनीति 100 साल से भी ज्यादा समय से चली है, लेकिन केरला में इस बार सबरीमला में 50 साल से अधिक उम्र वाली महिलाओं के प्रवेश के विषय पर सत्ताधारी वाम मोर्चा सरकार को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वोट बीजेपी को नहीं मिला बल्कि कांग्रेस के गठबंधन को 20 में से 19 सीट मिल गए। दिलचस्प बात यह है कि केरला की कांग्रेस ने सबरीमला के मुद्दे पर राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में फैसला लिया था। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
श्रोताओं, सूरत की इमारत में लगी भीषण आग में मरने वालों का आंकड़ा कितना है ये जानने के लिए और लोकसभा में इस बार कितने मुसलमान सांसद पहुंचे हैं ये जानने के लिए आप आइए bbchindi.com पर। और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन उससे पहले चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
BBC समाचार। गुजरात के सूरत शहर में एक व्यावसायिक परिसर में शुक्रवार शाम आग लगने की घटना सामने आई है। समाचार एजेंसी PTI ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के हवाले से 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। वो 7 जून को कंजर्वेटिव पार्टी की नेता के पद से इस्तीफा दे देंगी। भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर जाकिर मूसा के मारे जाने की खबर है। थाईलैंड में चुने गए सांसदों ने पहली बार अपना अपना पदभार संभाला है। अल्जीरिया में पुलिस ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। ये लगातार 14वां शुक्रवार है जब अल्जीरिया वासियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। नेपाल में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई का इंतजाम करने वाले आयोजनकर्ताओं ने बताया है कि एक हफ्ते के भीतर इस चोटी पर चढ़ाई करने वाले 7वें पर्वतारोही की मौत हो गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पूर्व हॉलीवुड फिल्म निर्माता हार्वी विंस्टन पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिलाओं और हार्वी विंस्टन के बीच मुआवजे के संबंध में समझौता हो गया है। BBC समाचार।
अब जल्द ही बजने वाले हैं रात के 8, लेकिन दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।